नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और भूटान जलवायु परिवर्तन, वायु गुणवत्ता, वन और वन्य जीव प्रबंधन के क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमत। सर्वोच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। नेपाल में भूस्खलन के कारण दो बसें नदी में बह जाने से 7 भारतीय नागरिकों सहित 60 से अधिक लोग लापता। घरेलू शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, सेंसेक्स 80,800 अंक जबकि निफ्टी 24,500 के पार। और लंदन में विंबलडन टेनिस में पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कराज का मुकाबला आज शाम डेनियल मेडवेडेव से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और भूटान पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता, वन वन्य जीव प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री जेम शेरिम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वायु गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन, वन प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीवन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। श्री सिंह ने भारत की वैश्विक पहल इंटरनेशनल विक्टेट अलायंस में शामिल होने पर भूटानी मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश समान भौगोलिक पारिस्थितिकी तंत्र और लोकतंत्र के समान मूल्यों में विश्वास करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका को बड़ी खंडपीठ को भेज दिया। हालांकि श्री केजरीवाल अभी हिरासत में रहेंगे क्योंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आबकारी नीति मामले में ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत उन्हें 25 जून को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने श्री केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर ने आज मुंबई में नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के संकाय और छात्रों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने सशक्त भारत, विकसित भारत 2047 के निर्माण में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका शीर्षक पर चर्चा में मुख्य भाषण दिया। छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के कदमों और पहलों से युवाओं के हित में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण, समृद्ध, सुव्यवस्थित और सुरक्षित बिम्स्टेक क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक इंजन के रूप में बिम्स्टेक की भूमिका पर जोर दिया है। बिम्स्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, सुरक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान सहित क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर मंत्रियों के साथ सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत की नेबरहुड फर्स्ट और लुक ईस्ट नीतियों के साथ साथ क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के संदर्भ में सागर विजन में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने सितंबर में होने वाले आगामी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड को देश का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस के बेलारी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक को कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित घोटाले के जांच के लिए आज सुबह बेंगलुरु में हिरासत में लिया गया। इस घोटाले में 187 करोड़ रूपये की धनराशि अवैध रूप से हस्तांतरित की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में कल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 20 स्थानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद आज पूर्व मंत्री और पूछताछ के लिए निदेशालय ले जाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली के मूल्यों में वृद्धि के खिलाफ आज प्रदर्शन किया। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लगाते और तख्तियां लहराते हुए आईटीओ पर प्रदर्शन किया। बिजली वितरण कंपनियों ने बिजली खरीद समायोजन शुल्क को 6.75 से बढ़ाकर 8.75 कर दिया है। नेपाल के चितवन जिले के नारायणघाट मुगलिंग सड़क खंड सहित सिमतलाल क्षेत्र में भूस्खलन के कारण आज सुबह यात्रियों को ले जा रही दो बसें त्रिशूली नदी में गिर गई। इन दोनों बसों में कुल 65 यात्री सवार थे। चितवन के मुख्य जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव ने पुष्टि की है कि आज सुबह 3:30 बजे दो वाहन नदी में गिरे। नेपाल पुलिस के अनुसार काठमांडू से रोहट के गौर जा रही एक बस में 41 लोग सवार थे और बीरगंज से काठमांडू जा रही दूसरी बस में 24 लोग सवार थे, जिनमें 7 भारतीय भी शामिल थे। नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के आपदा प्रबंधन दल के साथ गोताखोर बचाव अभियान चला रहे हैं और बचावकर्मी सड़क मार्ग पर बहाल कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ट्वीट किया है कि वे इस घटना से बेहद दुखी है और उन्होंने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड आज संसद में 5वीं बार विश्वास मत परीक्षण का सामना करेंगे। श्री दहल के लिए विश्वास मत हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि प्रतिनिधि सभा में नेपाली कांग्रेस के 88 सदस्य और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के 79 सदस्य हैं। उधर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सेंटर के पास केवल 32 सदस्य हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के बैठक में सर्वसम्मति से इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान और निकट भविष्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान पार्टी को जमीनी स्तर से मजबूत करने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि बीजिंगजम बंदरगाह देश में समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि देश में विश्व स्तरीय बंदरगाह बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। केंद्रीय मंत्री आज तिरुवनंतपुरम के बीजिंगजम बंदरगाह में पहले कंटेनर जहाज सैन फर्नांडो के आगमन के आधिकारिक स्वागत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा करने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में 170वें CPWD वार्षिक दिवस पर एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने परियोजनाओं में अधिक पारदर्शिता और कम लागत की आवश्यकता पर भी जोर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने LLB पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को शामिल करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद में ऐसे किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह से उन्हें बताया है कि यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रधानाचार्य एहसानुल हक और उप प्रधानाचार्य इम्तियाज सहित 4 लोगों को सीबीआई के रिमांड पूरी होने के बाद पटना के बेउर जेल भेज दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 28 जून को इन्हें गिरफ्तार किया था। जांच से पता चला कि पटना में खेमनीचक प्ले स्कूल से जब्त आंशिक रूप से जले प्रश्न पत्र राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से प्राप्त प्रश्न पत्र से मिलते हैं। इस प्रश्न पत्र के श्रृंखला को हजारीबाग के कल्लू चौक में स्थित ओएसएस स्कूल के परीक्षा केंद्र पर भेजा गया था। बंबई शेयर बाजार में आज तेजी का रुख है। सेंसेक 996 अंक बढ़कर 80,994 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 276 अंक बढ़कर 24,592 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। एशियाई बाजारों में हांगकांग में बढ़त रही, जबकि सोल, टोक्यो और शंघाई के शेयर बाजारों में गिरावट रही। कल अमरीकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। कच्चे तेल की कीमत और घरेलू शेयरों में बढ़त के बीच शुरूआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रूपये की कीमत ₹83.53 रही। लंदन में विंबलडन टेनिस में पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज का मुकाबला डेनियल मेडवेदेव से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना इटली के लोरेंजो मुसेटी से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।